हरे कृष्णा। आज हम सातवें अध्याय की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और ये जीवात्मा के सनातन धर्म की चर्चा करेगा। प्रायः लोग सनातन धर्म को हिंदू धर्म से उसकी पहचान करते हैं इस प्रकार से कि सनातन धर्म का अर्थ है हिंदू धर्म, लेकिन सनातन धर्म और हिंदू धर्म में बहुत बड़ा अंतर है, तो इसको हम आज देखेंगे। इस जगत को अगर आप देखें तो हर वस्तु क्षणिक है, हर पदार्थ क्षणिक है। कुछ समय के लिए कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उसका आदि होता है, कुछ समय तक उसकी स्थिति रहती है, मतलब वो सत्ता में रहता है, कुछ वस्तुएं वो उत्पादित करता है और उसके बाद वो क्षीण हो जाता है। तो भौतिक जगत में हम इस नियम को हमेशा सर्वत्र सर्वदा लागू होता हुआ देखते हैं, चाहे वो हमारे शरीर हो, चाहे कोई फल हो या और कोई वस्तु हो। लेकिन जैसा हमने पिछले छठे अध्याय में चर्चा किया कि इस संसार से परे एक संसार है जो सनातन है, शाश्वत है, जिसे आध्यात्मिक जगत कहते हैं, वैकुंठ जगत कहते हैं, और जीवात्मा भी सनातन है और भगवान भी सनातन है। अर्थात जीवात्मा और भगवान का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। साथ ही साथ हमने ये भी चर्चा किया था कि किस प्रकार से जीवात्मा भगवान से एक प्रेममय संबंध में रहती है। वैसे इसकी चर्चा हम आगे और अच्छे से करेंगे। तो भगवान का सनातन धाम है, सनातन भगवान वहां पे हैं और सनातन जीव है। और भगवद गीता का अभिप्राय या उद्देश्य ये है कि जीवात्मा के इस सनातन धर्म को, जो कि कृष्ण की, भगवान की प्रेममय सेवा है, उसको जीव के हृदय में जागृत करना। सनातन अर्थात यह भगवान के प्रति सेवा की, प्रेम की प्रवृत्ति जीवात्मा में पहले से ही है, लेकिन उसको केवल जागृत करना है। तो इस समय हम लोग विभिन्न कर्मों में लगे हैं जो हमारे इन विभिन्न शरीरों के अनुसार हैं, जिनका आदि है। हम जिस शरीर को धारण किए हुए हैं उसकी शुरुआत हुई थी, सब जानते हैं, और उसका एक दिन अंत भी होगा, और उसके अनुसार हम विभिन्न कार्यों में लगे हैं। लेकिन अगर इन कार्यों को त्याग कर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो यही उसका शुद्ध जीवन है, यही इसकी शाश्वत वृत्ति है, यही उसका सनातन धर्म है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेया संभवन्ति मूर्तयः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता, कि जितनी भी जीवात्माएं हैं उन सब के परम पिता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। प्रकृति पे वो दृष्टिपात करते हैं और सभी जीवों को प्रकृति में वो गर्भस्थ कर देते हैं, इसलिए जितने भी जीव हैं वह कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के सनातन अंश हैं। और इस कारण से, क्योंकि बद्ध आत्माएं इस संबंध को भूले रहती हैं अनादिकाल से, इस कारण से भगवान अपने भक्तों को, अपने सेवकों को कभी कभी अनादि बीच बीच में कहना चाहिए, बारंबार ही कहना चाहिए, आध्यात्मिक जगत से इस जगत में भेजते हैं ताकि वह इस सनातन धर्म को, जो कि जीव का कर्तव्य है भगवान के प्रति, उसको वो जागृत कर सकें। तो हमने क्या सीखा? एक तो बात ये सीखी यहाँ तक कि भगवद गीता का उद्देश्य है सनातन धर्म को बद्धात्मा के हृदय में जागृत करना, जो कि पहले से ही है लेकिन जागृत करना। दूसरा ये सीखा कि भगवान का धाम नित्य है, जीवात्मा नित्य है और भगवान नित्य हैं। और ये सीखा कि भगवान स्वयं आते हैं या अपने मुख्य या बहुत ही गोह्य पार्षदों को भेजते हैं ताकि इस सनातन धर्म की स्थापना वो इस जगत में कर सकें या जीवों के मदद कर सकें उनके हृदय में जो सनातन धर्म है उसको जागृत करने की। अब हम लोग इस जगत के प्राकृत धर्मों की तुलना सनातन धर्म से करेंगे कि जगत में व्याप्त धर्म और सनातन धर्म में अंतर क्या है। देखिए, पहली बात तो यह कि सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। जीवात्मा किसी संप्रदाय का नहीं होता है, भगवान किसी संप्रदाय के नहीं है, भगवान सभी के हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा का जो सनातन धर्म है वह भी किसी संप्रदाय विशेष के द्वारा लिमिट नहीं हो सकता है। यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म है, यानी जो जीवात्मा शाश्वत है परमेश्वर शाश्वत हैं, तो जो शाश्वत कर्म हैं जीव के भगवान के प्रति वह सनातन धर्म कहा जाता है। इस संबंध में श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने सनातन शब्द की व्याख्या बड़ी सुंदर की है और वो कहते हैं, ना तो जिसका आदि हो और ना इसका अंत। यानी कि अगर हम सनातन धर्म के बारे में बात करें तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर हमें मानना पड़ेगा, मान लेना चाहिए कि सनातन धर्म का न तो कोई आदि है और न अंत। अर्थात जिस किसी धर्म को हम अगर देखें कि इतिहास के पन्नों में उसकी शुरुआत है तो वह सनातन धर्म नहीं है। यानी मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन कुछ भी अगर बोले, इनका इतिहास में कहीं ना कहीं शुरुआत है, इसलिए इनको हम सनातन धर्म नहीं कह सकते। बहुत मैं समझता हूँ ये बातें आप लोगों को बड़ी कंट्रोवर्शियल भी लग सकती है, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है अगर गंभीर रूप से सोचे। जैसे मुसलमान धर्म 2500 साल पहले आया था, बुद्धिज्म जो है ऐसे ही 2500-3000 साल पहले आया था, तो ये एक प्रकार की श्रद्धा है, ये जीव के संग रहने वाला सनातन धर्म नहीं है। प्रायः लोग रिलीजन शब्द को सनातन धर्म मान लेते हैं या धर्म मान लेते हैं, लेकिन रिलीजन जो होता है, जैसे इंग्लिश का शब्द है, उससे यही सूचित होता है कि किसी व्यक्ति का किसी विशेष पथ में विश्वास है। लेकिन देखिए, विश्वास पद बदला जा सकता है। आज कोई हिंदू है तो वो मुसलमान बन सकता है, वो मुसलमान पथ को मानता है वो हिंदू बन सकता है, या वो क्रिश्चियन बन सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो विश्वास है वह सनातन है, क्योंकि इसका शुरुआत है एक विशिष्ट परिवार में जन्म लेकर के व्यक्ति अपने आप को मुसलमान, हिंदू या क्रिश्चियन मानने लगता है, और जब समाप्त उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद वो दोबारा किसी और परिवार में जन्म लेगा, तो फिर वहां अपने आप को उस धर्म से पहचान करने लगेगा। तो ये विश्वास जो है ये धर्म का असली अर्थ नहीं है। श्रीपद रामानुजाचार्य जी के प्रमाण के अनुसार फिर से हम याद दिलाएंगे कि न तो उसका आदि है और न अंत है, और इसके कारण से वह किसी संप्रदाय विशेष से बनता नहीं है, और जो जिसका संबंध किसी संप्रदाय से होगा तो वह सनातन धर्म नहीं हो सकता है, वह एक सांप्रदायिक धर्म ही है। एक बात आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि आपने बताया था कि हमें गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो अगर सनातन धर्म के बारे में भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम श्रीपद रामानुजाचार्य जो कि श्री संप्रदाय के आचार्य हैं उनकी बात स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या आपकी बात भी सांप्रदायिक नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। जैसे मैथमेटिक्स एक विषय है, तो मैथमेटिक्स किसी एक विशेष यूनिवर्सिटी का विषय नहीं है, लेकिन विभिन्न यूनिवर्सिटियाँ, विभिन्न स्कूल मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स एक सर्व सामान्य विषय है। उसी प्रकार से सनातन धर्म एक विषय है, विषय कह सकते हैं, धर्म है, उसकी सही सही जानकारी चार प्रकार के संप्रदायों में दी जाती है। उसकी चर्चा हम लोग आगे के अध्याय में करेंगे गहरे रूप से, लेकिन चार प्रमुख प्रामाणिक संप्रदाय हैं जो भगवान कृष्ण से आते हैं, और उसी में सनातन धर्म की सही सही व्याख्या की जा सकती है, जो केवल एक विश्वास विशेष को प्रस्तावित नहीं करते हैं, वो जीव के सच्चे स्वरूप को बताते हैं जो कि कृष्ण के संबंध में उसका है। इसलिए ये जो संप्रदाय की बात हो रही है, ये संप्रदाय सही ज्ञान देते हैं सनातन धर्म का, जैसे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी दे रहे हैं। वो जीव को किसी संप्रदाय से बांध नहीं रहे हैं कि एक संप्रदाय के द्वारा व्यक्ति को सही सही ज्ञान मिल रहा है अपनी वास्तविक स्थिति का। जैसे हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से आते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव इस संप्रदाय का है। संप्रदाय का अर्थ है सम्यक प्रदाय, जहां पे सम्यक रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है जीव के सनातन धर्म के विषय में। लेकिन अगर कोई संप्रदाय जीव को उसकी जो मूल स्थिति है कृष्ण के अंश के रूप में, उससे विमुख करके अपने संप्रदाय विशेष में जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो वह एक सांप्रदायिक धर्म है, लेकिन वो सनातन धर्म की शिक्षा नहीं दे रहा है उसको। हमने भी सीखा कि असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि वह तो जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। हमने सुन लिया था कि आत्मा का ना तो शुरुआत है और ना तो अंत है, तो आत्मा क्योंकि अविनाशी है, शाश्वत है, इस कारण से सनातन धर्म जो है, जो कि जीव का कर्तव्य है भगवान के प्रति, वह भी सनातन है। तो अब हमें समझ में आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि धर्म का अर्थ क्या होता है। धर्म का अर्थ विश्वास नहीं होता है, धर्म का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का वो गुण जो सदैव उसके साथ रहता है। एक पदार्थ के संग वो गुण जो उसके संग हमेशा रहता है उसको हम धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि के साथ ऊष्मा और प्रकाश सदैव रहता है, ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, ये तो आप स्पष्ट समझ रहे हैं। उसी प्रकार से जल के संग तरलता और प्यास बुझाने की क्षमता हमेशा रहती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जल से तरलता और प्यास बुझाने की क्षमता को हटा दिया जाए, फिर उसको बर्फ कहेंगे या हम लोग वाष्प कहेंगे, लेकिन जल नहीं कहेंगे। तो यानी कि धर्म का अर्थ है किसी भी वस्तु का वो गुण जो हम उससे अलग नहीं कर सकते। तो यानी अब हम सनातन धर्म को समझें, तो सनातन शब्द है न आदि न अंत, जिसका न आदि हो न अंत हो, और धर्म का मतलब है किसी पदार्थ का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते। इसलिए सनातन धर्म का अर्थ हुआ सनातन जीव की वह वृत्ति, वह शाश्वत वृत्ति जिसको जीवात्मा से कभी अलग नहीं किया जा सकता, जो उसका हमेशा हमेशा से साथ देता है या हमेशा साथ रहता है। तो हमने क्या सीखा इस सेक्शन में, सनातन धर्म का अर्थ है वह शाश्वत सनातन वृत्ति जीव की जो हमेशा उसके साथ रहती है। सनातन धर्म और आजकल के सांप्रदायिक धर्मों में क्या अंतर है ये भी सीखा हमने। सांप्रदायिक धर्मों का शुरुआत होती है वो एक विशेष प्रकार का विश्वास होता है जो कि परिवर्तित हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म ये विश्वास नहीं है, ये जीवात्मा का गुण है जो जीवात्मा से कभी अलग नहीं किया जा सकता। अब हम ये चर्चा करेंगे कि वह सनातन धर्म है क्या। तो आप इस जगत में देख सकते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। इस संबंध में सनातन गोस्वामी ने श्रीमान चेतन महाप्रभु से जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करी तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप है या स्वाभाविक स्थिति है या शाश्वत वृत्ति है भगवान की सेवा करना। तो अब आप इस जगत में देखेंगे, अगर महाप्रभु की बात को आप विश्लेषण करते हो तो आप देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में लगा हुआ है। जैसे अगर मैं इस समय कुछ प्रवचन कर रहा हूं तो मैं आप लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं, आपको भगवान के बारे में ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं, और अन्यथा भी लोग विभिन्न प्रकार से सेवा करते हैं। जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है और एक व्यक्ति ए दूसरे स्वामी बी की सेवा करता है, बी एक सी की सेवा करता है, सी और डी की सेवा करता है, मित्र मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है, यहाँ तक कि समाज के जो लीडर हैं वह भी वोट डाल, जो वोटिंग का समय आता है तो कहते हैं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो हम देखेंगे कि समाज में ऐसा कोई भी अपवाद नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एक दूसरे की सेवा ना कर रहा हो। तो यानी इस सेवा के द्वारा हम सुख का अनुभव करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं है, वो पूरी तरह से स्वार्थी भी हो तो भी वह अपने शरीर की सेवा में लगा रहता है। तो हम देख सकते हैं कि जीव को सुख सेवा के द्वारा ही प्राप्त होता है और सेवा बनने के बिना जीव नहीं रह सकता। इसलिए शाश्वत धर्म सनातन धर्म जो है वह है सेवा करना। और आप देखेंगे चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्ध हो, हर व्यक्ति हर जीव चाहे कुत्ता भी क्यों ना हो, हर जीव किसी न किसी समय किसी न किसी की सेवा में लगा रहता है। तो हमने ये सीखा कि जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति एक सेवक की है और जीवात्मा इस जगत में मिथ्या अहंकार के कारण सोच रहा है कि वह भोक्ता है, जबकि वो एक सेवक मात्र है। और इस जगत में हम किन किन लोगों की सेवा करते हैं, माता की सेवा करते हैं, पिता की सेवा करते हैं, पत्नी की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो सेवक तो हैं, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते। और तो दिक्कत क्या है, देखिए हम लोग हैं शाश्वत, और आप देख सकते हैं कि बचपन में व्यक्ति पहले माँ की सेवा करता है, माँ जैसे बोलती वैसे करता है, उसके बाद वो अपने टीचर्स की सेवा करता है, जैसे टीचर सिखाते हैं वैसा करता है, फिर उसके बाद वो नौकरी ढूंढता है, जो मालिक है वो सेवा बताता है तो वैसा करता है, बाद में वृद्ध हो जाता है तो अपने बच्चों पे आश्रित रहता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जीवात्मा अपने इस जीवन में अपने स्वामियों को परिवर्तित कर रहा है, लेकिन हमने ये सीखा कि जीवात्मा तो शाश्वत है और उसके शाश्वत स्वामी है कृष्ण। तो सनातन धर्म जीव का ये है कि वह कृष्ण की सेवा में प्रेम, कृष्ण की प्रेममय सेवा में लग जाए और इसके द्वारा जब इस प्रकार की भक्ति करता है, सनातन धर्म की क्या सकते हैं अभ्यास करता है, तो जो भगवान कृष्ण के प्रति उसका सुप्त प्रेम है वह जागृत होने लगता है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म से हमें क्या फायदा होगा। देखिए, इस जगत में सेवा करके ही हम लोग सुखी रह सकते हैं, भोग करके सुखी नहीं रह सकते। जितना सुख सेवा करने में मिलता है हर व्यक्ति जानता है, उतना सुख भोग करने में नहीं मिलता है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान के संग हमारा संबंध जो है वो एक ऑर्डर सप्लायर का नहीं है कि हम बस ऑर्डर करते रहें और भगवान से सप्लाई करते रहें। प्रायः लोग इस प्रकार के ही धर्म का अनुशीलन करते हैं जिसमें उनकी आवश्यकताएं भगवान पूर्ण करते रहें, लेकिन वस्तुतः सनातन धर्म का अर्थ यह है कि जीव निस्वार्थ भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे। और अगर हम चाहेंगे कि भगवान की सेवा किए बिना हम सुखी हो जाएं तो यह संभव नहीं है। क्यों, किस प्रकार से संभव नहीं है? यथा तरोर मूल निशश्च नेना तृप्यन्ति तस्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहारा च यतेन्द्रियाणाम सर्वाहरणम यथैव अच्युतेज्य तथैव अच्युतेज्य। अर्थात इस प्रकार से पेड़ को भोजन देने से सारे अंगों को इंद्रियों को मिल जाता है, पेड़ की जड़ में जल देने से सभी टहनियों को मिल जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण की सेवा करने से जीव स्वयं भी सुखी होता है और अन्य सारे लोगों को भी सुखी कर पाता है। और अगर आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हाथ सोचे कि मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं गुलाब जामुन पकड़ता हूँ लेके आता हूँ, पेट को क्यों दूँ, तो आप देख सकते हैं कि पेट को नहीं देगा तो उसको भी रस प्राप्त नहीं होगा, उसको भी शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो जीवात्मा अगर चाहे कि भगवान की सेवा किए बिना वो सुखी हो जाए तो यह उसका पागलपन है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि बहुत धनी लोग, तथाकथित रूप से भौतिक रूप से बहुत सफल लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं या बहुत टेंशन का शिकार होते हैं। उसका कारण यही है कि लोग कृष्ण की सेवा नहीं करते, जो कि सनातन वृत्ति है। तो यानी कि अब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, सनातन धर्म का अर्थ है वो जीव, यानी हम सब लोग जो अनादि हैं, हमारी कोई शुरुआत नहीं है और ना हम कभी अंत होने वाला है, कभी मरने वाले हैं, तो उसकी जो शाश्वत वृत्ति है वह है सेवा करने की। और वह शाश्वत वृत्ति जब कृष्ण की तरफ की जाती है तो उसको सनातन धर्म कहते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं वह भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो वो जेल में रह के काम करता है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन कभी हम प्रचार के लिए जाते हैं तो मालूम चला हमको वहां जा करके कि वो लोग काम करते हैं और उनको उनके इस काम के लिए तनख्वाह दी जाती है, तो तनख्वाह भी गवर्नमेंट ही देती है। लेकिन क्योंकि उन्होंने सरकार के नियमों का विद्रोह किया था या किया हुआ है, इस कारण से वह उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है जो व्यक्ति सीधे लाभ करता है जब वो बाहर आकर के सरकार की सेवा करता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो जेल वाले व्यक्ति हैं वो सरकारी नौकर हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है, उनका पोषण भी सरकार ही कर रही है। तो उस प्रकार से जो बद्धात्माएं हैं वो भगवान से विद्रोह किए रहती हैं, इस कारण से जगत में दुख पाती हैं, लेकिन उनका वरण पोषण भी कृष्ण ही कर रहे हैं। और वो माया की सेवा अगर करते भी हैं, अगर क्या वो करते ही रहते हैं, लेकिन माया कृष्ण की दासी है, तो अगर कोई व्यक्ति माया की सेवा कर रहा है तो भी कृष्ण की सेवा कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से जेल के व्यक्ति की सुविधाओं में और एक आईएएस ऑफिसर की सुविधाओं में बहुत अंतर होता है, उसी प्रकार की से माया की सेवा करने वाला दुख प्राप्त करता है और माया ही स्वयं उसको दुख देती है, और कृष्ण की सेवा करने वाला सुख प्राप्त करता है, शाश्वत जीवन की प्राप्ति करता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपने आप को आत्मा के रूप में समझ करके कृष्ण की सेवा में लग जाता है, सनातन धर्म के अनुशीलन में लग जाता है, और उससे उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल हो जाता है।